हरे कृष्णा। तो आज हम बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक है और बहुत ही सॉट आफ्टर टॉपिक है कि हस्बैंड वाइफ की आपस में जो झगड़े होते हैं ना, हस्बैंड वाइफ दे आर सपोज टू लिव टुगेदर वेरी हैप्पी, आपस में आराम से रहना चाहिए, लेकिन इतनी प्रॉब्लम्स कई बार खड़ी हो जाती हैं। हस्बैंड सोचते हैं मेरी लाइफ हेल बन गई, वाइफ सोचती है मेरी लाइफ हेल बन गई, दोनों मतलब अपने लाइफ को अच्छा करने का प्रयास करते हैं और इवेंचुअली क्या होता है जब वो बहुत प्रयास करने के बाद भी नहीं कर पाते तो देन दे गो फॉर डाइवोर्स, तलाक लेके सेपरेट रहना शुरू कर देते हैं। बट प्रॉब्लम इसके अंदर क्या है कि वो सेपरेट रहना शुरू तो कर देते हैं लेकिन ना वो हैप्पी होता है ना वो हैप्पी। तो सिचुएशन आखिर इस यहाँ पे क्यों आती है, ऐसा क्यों होता है, हाँ, और इसके क्या कारण है और इससे हम कैसे बच सकते हैं, हम उसके ऊपर आज ये शॉर्ट वीडियो पे डिस्कशन करेंगे। सो पॉइंट ये है कि हस्बैंड वाइफ के आपस में झगड़ा क्यों हो रहा है। हस्बैंड वाइफ का आपस में झगड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों इग्नोरेंस में, ना हस्बैंड को पता है ना वाइफ को पता है कि मैरिज क्या है। आखिर हमने शादी की है तो शादी का जो पर्पस क्या है, शादी करने का रीजन क्या है। वाइफ लड़की जो है वो ये सोचती है कि मैं मैरिज कर रही हूँ, मुझे बहुत सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, बहुत सारी खुशियां मिलेंगी, आई विल गेट हस्बैंड जो कि मेरा बहुत ध्यान रखेगा, है ना। ऑब्वियसली इसमें कुछ बुराई नहीं दिख रही। उधर हस्बैंड ये सोचता है यार मुझे एक वाइफ मिल जाएगी जो कि मेरी सारी सुविधाओं का ध्यान रखेगी, मेरे हिसाब से चलेगी, मेरा कहना मानेगी, सुख दुख में मेरा साथ देगी, है ना। इसमें भी अपेरेंटली कुछ बुराई नहीं दिख रही है। आई मीन ये कॉमन एक नॉर्मल एक्सपेक्टेशन है और इस एक्सपेक्टेशन में अगर हम देखें तो कुछ बुराई नहीं दिख रही, कुछ अनरीजनेबल नहीं दिख रहा। लेकिन अगर हम शास्त्र की दृष्टि से देखें तो हमें पता होना चाहिए कि मैरिज का मतलब क्या है। मैरिज को हिंदी में, संस्कृत में कहते हैं गृहस्थ आश्रम। आश्रम का मतलब है ऐसा स्थान जहां पर विष्णु कृष्ण सेंटर में है। जब वाइफ सोचेगी कि मैं सेंटर होनी चाहिए और हस्बैंड सोचेगा कि मुझे सेंटर होना चाहिए तो क्या हो जाएगा कि आपस में एक दूसरे के इंटरेस्ट आपस में क्लैश करना शुरू कर देंगे। प्रभुपाद जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं वो उदाहरण देते थे, फॉर एग्जांपल एक पॉन्ड है, पॉन्ड में हमने एक जगह पर एक पत्थर फेंका तो उससे क्या हुआ, रिपल्स बने, है ना, और हमने दूसरी जगह पर दूसरा पत्थर फेंका, एक रिपल बने और रिपल आप देखो कि वो बड़े होते चले जाते हैं। तो जो यहाँ वाला रिपल है वो बड़ा हुआ, यहाँ वाला रिपल है वो बड़ा हुआ, तो धीरे धीरे क्या होता है वो रिपल्स आपस में बढ़ के क्लैश कर जाते हैं। तो यही गृहस्थ आश्रम में, यही हमारी फैमिली लाइफ में आमतौर पर देखने को मिलता है कि वाइफ के एक रिपल्स चल रहे हैं, हस्बैंड के एक रिपल्स चल रहे हैं, जब तक क्लैश नहीं कर रहे एवरीथिंग इज गुड। लेकिन जैसे ही वो रिपल्स धीरे धीरे बड़े होते हैं, हस्बैंड के अलग वाइफ के अलग क्लैश करते हैं, प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, आपस में मनमुटाव आना शुरू हो जाता है। हस्बैंड ये सोचता है कि वाइफ मेरा अच्छे से ध्यान नहीं रख रही, वाइफ सोचती है हस्बैंड मेरा अच्छे से ध्यान नहीं रखता। प्रभुपाद बोलते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है, प्रभुपाद बोलते हैं सॉल्यूशन है कि वो जो दोनों पत्थर है उसको उठा के तालाब के सेंटर में एक ही जगह डालो तो क्या होगा, रिपल्स, एक सेट ऑफ रिपल निकलेगा, एक रिपल निकलेगा, वो जो है बड़ा होगा, धीरे धीरे फैलेगा, वो रिंग बड़ी होती चली जाएगी लेकिन वो रिंग किसी से भी टकराएगी नहीं क्योंकि सेकंड रिंग है ही नहीं, सेकंड रिपल ही नहीं है जिससे वो टकराएगी। तो जब सेकंड रिपल ही नहीं है जिससे टकराएगी, क्लैश होगा, तो नेचुरली जो है आपस में क्लैशेस नहीं होंगे। ये कैसे हो सकता है, ये हो सकता है अगर हम ये समझ लें कि गृहस्थ आश्रम जो है वो एक्चुअली में आश्रम जो शब्द है उसका मतलब है कि हमें कृष्ण को सेंटर में रखना चाहिए। अगर हम मैरिड लाइफ में एंटर कर रहे हैं विद अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि मैं मैरिड लाइफ में एंटर कर रहा हूँ ताकि मैं खुद अच्छे से भक्ति में आगे बढ़ सकूँ और मैं अपने स्पाउस को, अपने वाइफ या हस्बैंड को भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हेल्प कर सकूं, एंड वाइस वर्सा अगर वाइफ ये सोचे कि मैं भक्ति में आगे बढ़ूं और मैं अपने हस्बैंड को भी हेल्प करूं कि वो भक्ति में आगे बढ़े, तो कोई चांस ही नहीं है कोई क्वेश्चन नहीं है कि आपस में फ्रिक्शन है, आपस में मनमुटाव है। चलो आ गए, मनमुटाव आ गए है ना, लड़ाइयां हो गई, हमने बहुत प्रयास किया, बहुत कोशिश की, लेकिन डिफरेंसेस आ गए, डिफरेंसेस आ गए। तो हमें वाइफ को क्या सोचना चाहिए, हस्बैंड को क्या सोचना चाहिए और उनको क्या करना चाहिए। अगर सपोज वाइफ को लगता है यार हस्बैंड जो है वो मतलब बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है, हमें मतलब हर चीज में इंटरफेयर कर रहा है, बार बार टोक रहा है, यू नो, तो वाइफ को ये सोचना चाहिए एटलीस्ट ये मुझे भक्ति करने से नहीं रोक रहा, ये मुझे प्रोटेक्शन दे रहा है, मेरा ध्यान रख रहा है, बच्चों का ध्यान रख रहा है, तो मुझे थोड़ा सा टॉलरेट करना चाहिए। और श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि हस्बैंड को कंट्रोल करना बहुत इजी है, तो हस्बैंड को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, वाइफ हस्बैंड को कंट्रोल कर सकती है किससे, सेवा के द्वारा, अपने प्रति पतिव्रत धर्म का पालन करने के द्वारा। अगर वाइफ हस्बैंड का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, अगर वाइफ हस्बैंड की नीड्स का, उसकी पसंद नापसंद का ध्यान रखती है, उसके हिसाब से चलती है, तो टाइम की बात है ऐसे चुटकी बजाते हुए जो वाइफ है हस्बैंड को कंट्रोल कर लेती है ना। जो वाइफ जितना जल्दी इस चीज को समझ लेती है हस्बैंड को उतना जल्दी वो कंट्रोल कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल कृष्णा को भी जो उनकी वाइफ है, कृष्णा आत्माराम है, कृष्णा को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन जो कृष्ण की रानियां हैं रुक्मिणी सत्यभामा है ना, इन्होंने सेवा के माध्यम से अपने सर्विस एटीट्यूड से उन्होंने कृष्ण को कंट्रोल कर लिया और कृष्णा ने उनकी प्रसन्नता के लिए बहुत कुछ, उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके भी भगवान कृष्ण ने बहुत सारे काम किए। अगर वाइफ सपोर्टिव नहीं है, अगर वाइफ बात नहीं मान रही है, तो हस्बैंड को क्या करना चाहिए, हस्बैंड को सोचना चाहिए कि मैं परिवार का मुखिया हूँ, मुझे मतलब जो वाइफ है, ऑब्वियसली ज्यादातर केसेस में वाइफ हस्बैंड से थोड़ा एज में 1-2-4 साल छोटी होती है, तो उसको टॉलरेट करना चाहिए, उसको अगर वाइफ हस्बैंड को कंट्रोल कर सकती है बाय सर्विस, तो हस्बैंड वाइफ को कंट्रोल कर सकता है बाय लव, बाय डिटैचमेंट। तो हस्बैंड अगर वाइफ की डिमांड्स को सुने, प्रेम से प्यार से उसको समझाए, तो धीरे 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 थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपस में विचार मिलने शुरू हो जाएंगे, टाइम देना पड़ेगा। रिलेशनशिप कोई भी होगा उसको टाइम देना पड़ता है कि आपस में मिलके एक साथ चल पाए, है ना। और अगर एक दूसरे के एफर्ट से बात नहीं बन रही, आप एक सीनियर किसी व्यक्ति को, सीनियर डिवोटी को, एक अपने परिवार के सीनियर व्यक्ति को बीच में लेकर आओ, और वो व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो दोनों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखे, आपके वेलबींग को, आपके स्पिरिचुअल जो लाइफ है उसको ध्यान में रखे, आपको एक अच्छी बैलेंस्ड सलाह दे सके। अगर हम ऐसा करेंगे, अगर हम कृष्ण को सेंटर में रख के चलेंगे, अगर वाइफ हस्बैंड की कुछ बातों को टॉलरेट करेगी, उसको सर्व करने की कोशिश करेगी, हस्बैंड जो है वो वाइफ की बातों को समझेगा, ये समझेगा कि मेरा फर्ज है वाइफ को प्रोटेक्ट करना, मेरा फर्ज है, अब मेरी जो वाइफ है जिन्होंने समाज ने मुझे जिम्मेदारी दी है इसको संभालने की, तो उसको मैं जो मेरी विजडम है मैं उसके साथ शेयर करूं, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसको कुछ दिक्कतें आ रही हैं, मैं उसको समझूं, आउटराइटली रिजेक्ट नहीं करता, उसको समझूं और उसका हम मिलकर सॉल्यूशन निकालें, और हम बार बार एक दूसरे को रिमाइंड कराएं कि गृहस्थ आश्रम का जो गोल है वो अपने इंडिविजुअल एस्पिरेशंस को एक तरफ रख के मिलकर भगवान को सर्व करना है। और ये बात और भी ज्यादा रेलिवेंट हो जाती है जब बच्चे हो जाते हैं, तो उस समय हस्बैंड और वाइफ दोनों को लार्जर जो इंटरेस्ट है उसको ध्यान में रख के जो स्मॉलर इंटरेस्ट है उसको छोड़ देना चाहिए। चाणक्य पंडित ने भी कहा है कि जब आपको बड़ा स्वार्थ हो, बड़े स्वार्थ को देखकर छोटा स्वार्थ एक बार उसको सेक्रीफाइस कर देना चाहिए, क्योंकि आप एक बड़े स्वार्थ के पीछे हो। अगर बच्चे हो गए, फैमिली आगे बढ़ रही है, तो हमें बच्चों के भविष्य के लिए है ना हमें देखना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, और हमें बच्चों के भविष्य के बारे में सोच के एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। शुरू में कॉम्प्रोमाइज लगता है, धीरे धीरे सब हस्बैंड भी सेटल हो जाती है, वाइफ भी सेटल हो जाती है, और लोग देख के बोलते हैं दैट्स अ गुड यू नो फैमिली, फैमिली हो तो ऐसी फैमिली। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।